السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. दुनिया में इंसान की ये एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि उसकी मांगी हुई दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाएं, या लोग उससे इतनी मोहब्बत करते हों कि उसके लिए गायबाना दुआएं करें। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जहाँ पे भी हम जाते हैं तो वो लोग एक दूसरे को, और कभी हमें और हम कभी दूसरे को कहते हैं कि आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि हर एक जानता है कि कोई भी जब गायबाना तौर पर दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो वो दुआ कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की अपने भाई के लिए उसकी पीठ पीछे की गई दुआ मुस्तजाब होती है, यानी कबूल होती है। और उसके सर के करीब एक फरिश्ता मुकर्रर होता है, वो जब भी अपने भाई के लिए दुआए खैर करता है तो ये फरिश्ता उस पर कहता है आमीन, और तुम्हें भी इसी की तरह अता हो। यानी जब भी गायबाना किसी के लिए दुआ की जाती है तो अल्लाह ताला अपने पास एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो आमीन कहता है, और कहता है कि तुम्हें भी यही मिले। यानी अगर उसने किसी के लिए सेहत मांगी है, किसी के लिए खैर मांगी है, किसी के लिए कोई भलाई मांगी है, आसूदगी मांगी है, कोई भी चीज़ मांगी है, तुम्हें भी यही मिले। तो कितना फ़ायदेमंद है किसी और के लिए दुआ करना। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और हमें क्या मिला, हम क्यों लोगों के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करें, हम उस वक्त अपने लिए दुआ कर लेते हैं। तो अपने लिए आप दुआ करें, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि फरिश्ता आपके लिए दुआ करें, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह ताला की पाक मखलूक हैं, गुनाहों से पाक हैं, मासूम हैं, और उनकी दुआएं कबूल होती हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि अगर किसी को फरिश्ते की दुआ मिल जाए, यानी वो इस दुआ पे भी आमीन कहता है, और आप अगर किसी के लिए करें तो आपको भी वो दुआ देगा। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, बजाय कि हम लोगों को कहें कि आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला के फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें, इससे बड़ी क्या खुशनसीबी होगी। आप वो सोचे ना, अगर आपको आज पता चल जाए कि आज हरम में मेरे लिए दुआ कराई गई है, इमाम काबा ने मेरे लिए दुआ की है, तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। हालांकि वो तो एक इंसान ही है, मगर जब फरिश्ते के लिए हम कहते हैं कि फरिश्ता दुआ कर रहा है उसके लिए, तो उसकी दुआ तो रद्द नहीं होती है। वो तो अल्लाह ताला की वो मखलूक है जो अल्लाह ताला से बहुत करीब है। तो क्या हम नहीं चाहते कि फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करें? और ये चीज़ हमें कितनी सुकून देगी अगर हमें ऐसा पता चल जाए, और ये बड़ी वाकई सआदतमंदी होगी कि अल्लाह के फरिश्ते दुआएं खैर करते रहे हमारे लिए, और वो दुआएं कबूल भी होने का ज़्यादा है हमारे लिए चांस। तो फिर हम क्या करें? एक तो हमें ये पता चला कि हम दूसरों के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दें, और दूसरी, और क्या काम ऐसे करें जिन कामों पे हमें फरिश्तों की दुआएं मिलना शुरू हो जाएं। आप पकड़ पकड़ के दूसरों को कहते हैं मेरे लिए दुआ करो, तो पता नहीं उसको याद भी रहता होगा कि नहीं, लेकिन फरिश्ते अल्लाह ताला ने इस ड्यूटी पे मुकर्रर कर दिए हैं, तो उनसे तो भूल चूक नहीं होनी, वो तो लाजमी करेंगे फिर दुआ। और आज हम वही सारे आमाल देखते हैं जिनसे हम फरिश्तों की दुआओं में शामिल हो जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ बातें ऐसी बताई हैं कि जिसके जरिए हम उनकी दुआओं में शामिल हो सकते हैं। एक बताया, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तक इंसान दरूद शरीफ पढ़ता रहता है, तो जब तक उसके होंठ हिलते रहेंगे, दरूद पढ़ते रहेंगे, तब तक अल्लाह ताला फरिश्ते को लगा देता है कि वो इसके लिए दुआएं करते रहे। फरिश्ता उसके लिए दुआ करता रहेगा। तो आपको दरूद शरीफ के कितने फायदे पता चल गए ना। आपने अगर फरिश्ते से दुआ लेनी है तो फिर दरूद शरीफ ज्यादा कर लें। अगर आप ज्यादा देर ले चाहते, जितनी देर पढ़ते रहेंगे वो थकेगा नहीं, वो आपके लिए दुआएं करता रहेगा। और सूरह आज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अल्लाह ताला वो ही है जो तुम पर रहमत फरमाता है और उसके फरिश्ते भी तुम्हारे लिए दुआए रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। और अल्लाह ताला मोमिनों पे बड़ा मेहरबान है। एक और मकाम पे अल्लाह ताला ने सूरह गाफिर में फरमाया कि अरशे इलाही को उठाने वाले फरिश्ते भी दुआएं करते हैं। सूरह गाफिर आयत 7 में कि जो फरिश्ते अरश को उठाए हैं, और ये वाले फरिश्ते अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब हैं क्योंकि ये अर्श को उठाने वाले, वो बहुत बुजुर्गी वाले फरिश्ते हैं, इनका मकाम बहुत ऊंचा है। फरिश्ते सारे ही पाक मखलूक हैं, लेकिन कुछ फरिश्तों के रैंक्स बहुत ऊंचे हैं। जैसे रैंक्स होते हैं ना किसी भी, उसमें आप देखते हैं किसी दफ्तर में या किसी आर्मी में, किसके रैंक्स ऊंचे होते हैं, किसी के नीचे होते हैं। तो ये कुछ फरिश्ते हैं जिनके रैंक्स बहुत ऊपर हैं, और जो फरिश्ते अर्श के इर्द गिर्द भी जमा हैं वो भी, और जो अर्श को उठाने वाले भी, सब अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, और ईमान वालों के लिए मगफिरत मांगते रहते हैं। यानी ईमान हमारा मजबूत होगा तो वो हमारे लिए बख्शिश तलब करेंगे, खास तौर पर रमजान में तो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है कि तुम ईमान वालों की दुआओं पर आमीन को, जो बंदे रोजेदार हैं अल्लाह के उनकी दुआओं पर आमीन को, तो वो मगफिरत तलब करते हैं। और ये सूरह गाफिर में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि वो क्या दुआ करते हैं ईमान वालों के लिए। ए हमारे परवरदिगार, तूने अपनी रहमत और इल्म से हर चीज़ का अहाता कर रखा है, लिहाजा इन लोगों को बख्श दे जो तौबा करें और तेरे रास्ते की पैरवी करें, और तू उन्हें दोजख के अजाब से बचा ले। तो क्या चीज़ है जो हमें उनकी तरफ से बख्शिश की दुआओं का मुस्तहिक बनाती है। वो किसके लिए दुआ कर रहे हैं? कहते हैं अल्लाह उनको बख्श दे जो तौबा करें। इसका मतलब जितनी हम ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे उतना ही वो भी हमारे लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह अकबर। किसी का कॉल है बहुत ही प्यारा सलफ में से, वो कहते हैं ताज्जुब है उस डूबने वाले पे जिसके पास बचाव का सामान था फिर भी वो डूब गया। कितनी हैरत की बात हो ना, आपको किसी का पता चले कि उसके पास बचाव का सामान था फिर भी वो डूब गया। जी तो पूछा गया बचाओ का सामान क्या है, फरमाया इस्तिग़फ़ार। ये बचाओ का सामान है, हम इसके जरिए बच सकते हैं फिर भी अगर डूब जाएं। अल्लाह ताला ने ये इस्तिग़फ़ार रख के हमारे लिए, तौबा करना हमारे लिए रख के हमें कितनी बड़ी एक नेमत दे दी कि गुनाह तो हमसे होने ही थे, लेकिन अल्लाह ताला ने एक तरीका बना दिया कि तौबा करके और गुनाहों से पाक हो जाओ और तेरे रास्ते की पैरवी करें। यानी ए अल्लाह जो रास्ता तूने दिया है, यानी सिराते मुस्तकीम पे चलने वाले, अल्लाह तू उनको जहन्नुम के अजाब से भी बचा लेना, और अल्लाह ताला तू उनको बख्श भी देना। तो इसका मतलब है कि ये दुआएं फरिश्ते कर रहे हैं, और रमजान की तो ऐसी मुबारक घड़ियां हैं और हर लम्हा दुआओं की कबूलियत का है। इस महीने में अगर हम ये आमाल करें जिनके ऊपर फरिश्तों की दुआएं मिल रही हैं, तो हमारी भी दुआएं कबूल और फरिश्तों की भी दुआ की खुशखबरी हमें दे दी गई, तो हमारे लिए तो डबल बात हो गई ना। इसलिए ये वाले काम करें जिनकी वजह से हमें इनकी दुआएं मिल सकें। इसी तरह एक और तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, फरमाया बेशक अल्लाह ताला पहली सफ वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और उसके फरिश्ते पहली सफ वालों के हक में दुआए खैर करते हैं। यानी जो मस्जिद में पहले जाता है और पहली सफ में जाके खड़ा होता है, यानी जाहिर है वो पहले गया था तो पहली सफ में उसको जगह मिली, उसके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। और एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सफ वालों के लिए 3 बार और दूसरी सफ वालों के लिए 1 बार इस्तिग़फ़ार की दुआ फरमाई थी। इसी तरह नमाज के इंतज़ार में जो मस्जिद में बैठे रहते हैं, हम कहते हैं ना, हम क्यों इतनी जल्दी जाके बैठ जाएं, अभी तो नमाज का टाइम नहीं हुआ। नहीं, अगर आप मस्जिद में गए और वहां पे नमाज के इंतजार में आप बैठे हुए हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा मुसलसल नमाज ही में होता है जब तक वो नमाज की जगह पर नमाज के इंतजार में रहता है, और फरिश्ते कहते रहते हैं अल्लाह इसको माफ कर दे, अल्लाह इस पे रहम फरमा दे। सुभान अल्लाह, हम तो अपने लिए माफी की दुआ करें ना करें, लेकिन फरिश्ते दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको माफ कर दे, इस पे रहम कर दे जितनी देर हम वहां पे बैठे। अल्लाह हू अकबर। यहाँ तक कि वो उठ के यहाँ तो चला जाता है या बेवजू हो जाता है। बेवजू हो गया तो तब भी फिर फरिश्ते दुआ करना बंद कर देते हैं, और अगर उठ के चला गया तो तब भी खत्म। अल्लाह हू अकबर। तो इससे हमें पता चला कि मस्जिदों में जाना भी इंसान को फरिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक बना देता है। इसी तरह जब इंसान नमाज पढ़ ले तब भी इंसान के लिए, अगर वो वहीं बैठ के दुआ करता रह रहा है, जिक्र करता रह रहा है, वहीं पे बैठा हुआ है और बैठे उसी जगह से उठा नहीं है, तो उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। अल्लाहु अकबर। यानी फरिश्ते, आप नमाज पढ़ के आप बैठ गए, जैसे एक हदीस में आता है कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी फिर वो अपनी नमाज की जगह बैठा रहा, तो फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं, और फरिश्तों की दुआ ये होती है अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इस पे रहम फरमा दे। अल्लाह हू अकबर। हाँ, और इसी तरह सहरी खाने वालों पे, जब आप सहरी खा रहे होते हैं तो सहरी की ज़रूर एहतमाम करें, ये ना कहें कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं सहरी की। सहरी का मतलब ये नहीं होता ज़रूरी आपने बहुत बड़ी कोई ज़्यादा चीज़ खानी है, कोई पराठे ही खाने हैं या कोई और ही बड़ा फीस्ट ही करेंगे तो फिर सहरी होगी। आप पानी का घूंट भी पी लेते हैं तो वो भी सहरी है। तो जब इंसान रोज़ा रखने की नीयत से सहरी करता है तो उस वक़्त भी फरिश्तों को अल्लाह ताला लगा देता है कि मेरे इन बंदों के लिए दुआएं करो जो सहरी कर रहे हैं। उस वक्त हम अपनी खाने में लगे होते, वो हमारे लिए दुआएं कर रहे थे, और अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। यह हदीस सिलसिला तो सहीहा की यह हदीस है। अल्लाह अकबर। इसी तरह जो इंसान लोगों को नेकी की बात बताता है, भलाई की तालीम देता है ना, उसके लिए भी फरिश्ते दुआएं करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते और आसमान और ज़मीन वाले, यहाँ तक कि चूंटियाँ अपने सुराख में और मछलियाँ, उस शख्स के लिए नेकी, जो नेकी और भलाई की तालीम देता है, खैर व बरकत की दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला खैर व बरकत उन पे नाजिल करता है और ये फरिश्ते दुआएं करते हैं। तो सोचें, हमें दुआएं मिल गई, अगर हम किसी को खैर की तालीम दे दें, कोई खैर की बात किसी को बताएं, ना कि बुराइयों की तरफ लेकर जाएं लोगों को। इसी तरह वो लोग जो सफ़ों को मिलाते हैं उनके बारे में भी ये बात आती है। जब आप मस्जिद जाएं, आप अगर आजकल तरावी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो सफ़ों को मिलाने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला उन लोगों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है, और फरिश्ते दुआ करते हैं जो सफ़ों को मिलाते हैं, और जो आदमी सफ़ में खाली जगह को भर दे अल्लाह ताला इसकी वजह से उसका एक दर्जा बुलंद कर देते हैं, और अल्लाह ताला को वो कदम बड़ा ही पसंद है जो कदम सफ को मिलाने के लिए उठाया जाता है। अब हम कहते हैं हमने यहाँ पे जानवाज बिछा ली, अब हम क्यों हटे यहाँ से, अब हमने तो हिलना ही नहीं, चाहे अकेले ही खड़े रह जाए पीछे, चाहे आगे कितनी जगह हो, मैं क्यों जाऊँ, कोई और चला जाए ना। अगर आपको ये पता चल रहा हो कि मेरा दर्जा बुलंद हो जाएगा और फरिश्ते मेरे लिए दुआएं करेंगे, और ये कदम जो मैं उठाऊंगी सफ में शामिल होने के लिए, ये 2-3 कदम जो मैंने उठाए हैं ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, तो फिर सोचें जरा कि क्या हम सफ मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, या हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये भी छोटे छोटे काम है, लेकिन देखें इनके जरिए हम सुभान अल्लाह फरिश्ते की दुआएं ले सकते हैं। इसी तरह सफों में जो दाएं तरफ खड़े होने वाले, राइट साइड सफ की जो होती है ना, वो ऐसी तरफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफों के दाएं जाने पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके फरिश्ते दुआएं खैर करते हैं। तो जब आप मस्जिद में जाएं, आप देखें कि अगर आपको दाएं तरफ जगह मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे जो काम होते थे ना, वुजू करना, कंघी करना, जूते पहनना, दाएं तरफ से शुरू करने को पसंद फरमाते थे। तो इसलिए हम भी दाएं तरफ को अहमियत दें और दाएं तरफ जाके खड़े होने की कोशिश करें। इसी तरह वो इंसान जिसने बावजू होके अल्लाह का जिक्र करते हुए अपने बिस्तर पर जो गया है और रात को उसकी आंख खुलती है, वो अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की खैर का सवाल करता है, अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। लेकिन उसको एक और भी चीज़ मिलती है और वो हदीस से पता चलती है कि जिसने वुजू किया, अपने बिस्तर पे जगह पकड़ी और वो रात की जिस घड़ी में भी पहलू बदले, यानी जब भी वो उसकी आंख खुले, वो दुनिया और आखिरत की भलाई मांगता है अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं। वो वुजू करके लेटा था ना, एक फरिश्ते को अल्लाह ताला मुकर्रर कर देते हैं कि वो फरिश्ता इसके साथ रहता है, फरिश्ता इसके साथ रहता है। और जब वो रात के वक्त करवट बदलता है, फरिश्ता कहता है अल्लाह अपने बंदे को माफ कर दे, ये बावजू होके सोया था। जाहिर आप सोएंगे तो तब तो वुजू खत्म ही हो गया ना, लेकिन जब आप बिस्तर पे लेटने गए उस वक्त आपने वुजू किया, तो अब आप करवट भी बदल रहे, फरिश्ता दुआएं कर रहा है। फिर आप सुबह को उठते हैं ना जब, तब भी वो दुआ करता है, तब वो जुदा होता है, तो तब भी वो दुआएं देता है इस बंदे को। तो बावजू होके हम रात को सोएं, आप दिन में भी कोशिश करें कि हम बावजू रहें। वो वुजू इट सेल्फ एक नेकी है। उसके बाद तहियतुल वुजू आपने पढ़ी, 2 रकत नहीं भी पढ़ी, लेकिन वुजू को भी नेकी समझे कि ये भी एक इबादत का काम है। ठीक है, तो हमने कितनी सारी बातें सीखी हैं आज के गायबाना तौर पे। हम किसी मुसलमान के लिए दुआ करें, उसको टाइम वेस्टेज ना समझे, वो कौन सा देख रहा है, उसको तो पता नहीं है ना कि आप दुआ कर रहे हैं। वो अब आपको कह गया जी हमारे लिए दुआ करना, हमारे प्यारे के लिए दुआ करना, हम इस मुसीबत में ये दुआ करना, अब आप करें नहीं करें आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने कर ली तो आपको फरिश्ते की दुआ मिलेगी। इसी तरह तौबा करने वालों के लिए दुआएं अर्श के उठाने वाले फरिश्ते करते हैं, इस तरह सिराते मुस्तकीम पे चलने वालों के लिए दुआएं करते हैं, इस तरह पहली सफ में खड़े होने वालों के लिए दुआएं करते हैं, नमाज के इंतजार में मस्जिद में बैठे रहने वालों के लिए दुआएं करते हैं, इस तरह वो उनके लिए दुआएं करते हैं जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, इसी तरह उनके लिए दुआएं करते हैं जो रात को वुजू करके सोते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं कि जो नमाज पढ़ के बैठे रहते हैं नमाज की जगह पर, और इसी तरह दाएं तरफ जो सफ में आके खड़े होते हैं उनके लिए, और जो सफ को मिलाते हैं उनके लिए, और जो खैर की तालीम देते हैं उनके लिए। और ये एक जगह आता है कि फजर और असर बा जमात अदा करने वालों के लिए भी अल्लाह के फरिश्ते दुआएं करते हैं। अल्लाह अकबर। तो और सहरी खाने वालों के लिए भी, जी सहरी खाने वालों के लिए भी दुआ करते हैं। तो हम कितनी सारे तरीके से हम दुआएं ले सकते हैं, और एक ख़ास और ख़ास वक्त है जिस वक़्त दुआएं कबूल होती हैं और हमारी भी दुआएं कबूल होती हैं और फरिश्ते भी दुआ करते हैं हमारे लिए, वो कौन सा वक्त है? इफ्तार का। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं, और जब रोजेदार के सामने कोई खाना खाए तब फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। ये जो पहली बात थी, रोजेदार के लिए दुआएं करते हैं, वो सहरी के बाद करते हैं। और एक दूसरी बात है कि रोजेदार के सामने जब खाना खाया जाए तो उसके लिए फरिश्ते दुआ कर रहे होते हैं। अब देखिए सुभान अल्लाह, फरिश्ते दुआ करते हैं, यानी आप बैठे में, अब आपके सामने मसलन गैर मुस्लिम लोग हैं, आप गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, उनका लंच टाइम है, आप बैठे हुए हैं, आपका रोज़ा है, तो उस वक्त बेसब्री ना, और उस वक्त ये ना सोचे हाय हमारा तो रोजा, और देखो ये तो खा रहे हैं मजे से, और कैसी अच्छा मजे की खुशबू आ रही है, और क्या नहीं, उस वक्त ये सोचे फरिश्ता मेरे लिए दुआ कर रहा है। जब तक वो आपके सामने बंदा खाता रहेगा, फरिश्ता आपके लिए दुआ करता रहेगा। और जब आप किसी को इफ्तार करवाते हैं, उस पर भी फरिश्तों की दुआएं, इसीलिए हम वो दुआ करते हैं ना, जब आप किसी के पास इफ्तारी करने के लिए जाते हैं, तो आपको वो दुआ सिखाई गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई गई कि जब कोई आपको इफ्तार कराए तो आपको क्या कहना चाहिए। अफ्तार इंदकुम साइमून वा कला तआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका, रोजेदार तुम्हारे पास रोजा इफ्तार करते रहे, चाहे कोई आपको इफ्तारी भेजे, या आप किसी के घर गए हैं इफ्तार करने के लिए, या किसी ने आपकी इफ्तार का इंतजाम किया और फिर तुम्हारे पास रोजेदार इफ्तार करते रहे, नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहे और फरिश्ते तुम्हें दुआएं देते रहे। तो इसका मतलब है कि जो इफ्तार करवाता है उसकी वो भी दुआ लेता है। इसी तरह जो बीमार की इयादत करता है, बीमार की इयादत करने वाले अगर सुबह को करेंगे, 70,000 फरिश्ते शाम होने तक दुआ करते रहते हैं, और अगर शाम को इयादत करेंगे सुबह तक 70,000 फरिश्ते दुआएं करते रहते हैं। तो इतने फरिश्तों की दुआएं इंसान को मिल जाती हैं अगर वो किसी बीमार की इयादत करता है। तो बीमार कोई हो तो उसकी पूछ लें, उसके पास चले जाएं, उसको थोड़ी सी अच्छी बातें उसके पास बैठ के कर लें, इससे क्या होगा उसका भी दिल बहल जाएगा, उसकी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो जाती है जब कोई आता है उसके पास, उसको अटेंड करता है। तो हम ये इस तरह से हम फरिश्तों की दुआओं में शामिल हो सकते हैं, और ये बहुत सारे काम हैं। कुछ काम तो हम अपने लिए चुन लें कि ये वाले काम तो मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना ये किया करूँ। अल्लाह ताला हमसे सबसे कबूल करे। आजकल आप कुरान करीम पढ़ते होंगे, इमाम सुयूती फरमाते हैं कुरान करीम पढ़ना एक एजाज़ है, एक ऑनर है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इंसान को इज्जत देता है, इंसान को बड़ी इज्जत मिलती है। ये सिर्फ इंसान के लिए है, फरिश्ते फरमाया इससे महरूम है, इसीलिए वो इंसान की जुबान से कुरान सुनने का कि बहुत तमा रखते हैं, बहुत उनको जी चाहता है, बहुत शौक रखते हैं कि वो कुरान को सुने जब इंसान कुरान पढ़ रहा होता है। तो फिर कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ें, खूबसूरत तरीके से पढ़ें, और इसमें पढ़ते हुए ये सोचें कि फरिश्ते भी मेरा कुरान सुन रहे हैं और अल्लाह ताला खुद सुन रहा है मेरा कुरान। हम नमाज की तरफ आते हैं, नमाज में हम दुरूद शरीफ के बाद की जाने वाली दुआओं तक पहुंचे थे। अब हमने देखें शुरू की नमाज, और उसके अंदर हमने सारा देखा, जब हमने सना की सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का, आप क्या जानते हैं कि ये कितना बेहतरीन कलमा है, इतना बेहतरीन कलमा है। इसके बारे में एक रिवायत आती है जो बड़ी प्यारी, और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको जब ये आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा इसको पढ़ने का। और वो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को जो कलमा बहुत महबूब है, जो कलमा बहुत महबूब है वो क्या है, वो यही कलमा सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। तो जब बंदा ये कहता है ना, अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, उसका बहुत फेवरेट है। आपको पता है वैसे भी जितनी तस्बीहात हम कर रहे हैं, ये तस्बीहात जैसे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, या सुभान अल्लाह व बिहम्दी, या सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, या सुभान अल्लाह अलअजीम, तो या सुभान रब्बी अलआला आप अपने रुकू सजदे में, या सुभान रब्बी अलअजीम अपने रुकू में पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम, ये वाली भी तस्बीह पढ़ते हैं। इस तरह बहुत सारी सुभान के साथ तस्बीहात है ना, तो ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ये। और जितनी ऐसी तस्बीहात हैं, ये इंसान के लिए परेशानियों को भी दूर करने का जरिया बनती हैं, क्योंकि सूरह हिजर के अंदर, सूरह हिजर के एंड का पार्ट है जिसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए नबी, हमें पता है कि आपका सीना घुटता है, तंग होता है इन बातों से जो ये कहते हैं, यानी हर्टफुल बातें कहते थे ना, तो आप क्या करें, आपको इलाज क्या बताया गया। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस्साजिदीन, अल्लाह ताला ने इसका इलाज बताया, फसब्बिह तस्बीह करें किसके साथ, बिहम्दि रब्बिका अपने रब की हम्द के साथ, तस्बीह भी और हम्द भी, यानी जब हम कहें ना सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, तो इसमें तस्बीह भी है और इसमें हम्द भी है, दोनों है। इसको ये नुस्खा अल्लाह ताला ने खुद दिया अपने नबी को कि आप तस्बीह करें और हम्द करें, वकुम मिन साजिदीन, और सिद्दा करने वालों में से हो जाए, यानी आप ज्यादा नफाफिल नमाजें ज्यादा पढ़ें। तो इससे हमें पता चलता है कि ये तस्बीहात जो हैं इंसान के ऊपर गम है, रंज है, ऐसी कैफियात आपको पता है आ जाती हैं इंसान के ऊपर के उसका दिल तंग होता है, कभी कोई कोई बात कह देता है जिससे दिल तंग होता है, कभी कोई सताता है जिससे दिल तंग होता है। तो ये जो तस्बीहात हैं ये इंसान को ऐसे वक्त में इंसान के दिल को तसल्ली और तशफ़ी देने वाली हैं, इंसान का दिल इनसे यानी थम जाता है, ठहर जाता है, इंसान के दिल को सुकून आता है इन तस्बीहात के जरिए। तो लिहाजा तस्बी को सिर्फ ये ना सोचें कि हम तस्बी कर रहे हैं अल्लाह ताला के नाम की और बस तस्बी है, तो बस तस्बी करने का हमें बताया गया और इससे हमें इतना सवाब मिल रहा है, बल्कि तस्बी इंसान के लिए सोचें कितनी सारी उसके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आती है कि उसकी परेशानियां ही दूर हो जाए। इससे और क्या अच्छी बड़ी बात हो सकती है कि इंसान की परेशानियों को दूर करने वाली है तस्बीह जो है, इंसान के गमों का इलाज है तस्बीह के अंदर, सुभान अल्लाह। तो इसलिए जब तस्बीह को आप करें तो इसी शौक के साथ करें कि मेरे लिए गम फिक्र परेशानियां जितनी भी हैं वो इस तस्बीह के जरिए मेरी दूर हो जाएंगी। इसलिए सुभान अल्लाह ही व बिहम्दी ये तस्बीह जो है ये भी बहुत अजीम तस्बीह है, इसकी वजह से ही अल्लाह ताला अपनी मखलूक को रिस्क देता है, और ये वो तस्बीह है जो कि फरिश्तों की तस्बीह है, फरिश्ते भी यही वाली तस्बीह करते हैं, सुभान अल्लाह ही व बिहम्दी ही। इसलिए आप ये तस्बीह किया करें ताकि आपके लिए तस्बीह का सवाब भी मिल जाए, हम्द का सवाब भी मिल जाए और भी गम दूर हो जाए। और वैसे भी जो इस तस्बीह को दिन में 100 दफा कर लेगा, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, छोटा सा कलमा है ना, दिन में 100 दफा कर लेगा ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पिछले तमाम गुनाह अल्लाह ताला बख्श देता है, चाहे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और समंदर की झाग आपने देखा बहुत ज्यादा होती है, आगे को आती है जब, तो इतने गुनाह भी हों तो अल्लाह ताला बख्श देगा जब 100 दफा कहेंगे सुभान अल्लाह ही व बिहम्दी। तो ये बड़ा ही अजीम कलमा है, गो के 3 ही अल्फाज हैं, तो इसको भी हम अपने जिक्र आज का ये रखें सुभान अल्लाह ही व बिहम्दी ही का। तो हम देखते हैं अब तशहुद के अंदर हमने जो दुआएं करनी थी उनकी तरफ जरा आ जाते हैं, कि हमने रब्बी जालनी मुकीम सलाती इसके भी हमने समझ लिया और रब्बना आतिना को भी हमने समझ लिया था लास्ट टाइम। अब मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें बयान फरमाई है, और उनमें 2-3 आती हैं लेकिन चीज उसमें एक ही बात एक ही है। एक रिवायत आती है जो सही मुस्लिम की है, जिसमें ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तशहुद में 4 चीजों से अल्लाह ताला की पनाह जरूर मांगा करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ सहाबा को सिखाते थे जैसे उनको कुरान करीम की सूरतें सिखाते थे, इसलिए इसको बहुत जरूरी है कि इसको पढ़े, और हमें ये कभी सिखाई नहीं गई। तो क्या है इसका मतलब, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हमारा हमदर्द कोई नहीं हो सकता, उनको हमसे जितनी मोहब्बत थी और जितना वो अपनी उम्मत के लिए भलाई चाहते थे कोई नहीं औचा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें ये सिखा रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारी इसके अंदर बहुत ज्यादा भलाई है। तो दुआ क्या है, अगर नहीं आती थी आप याद कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबी जहन्नम, अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से मुझे बचा ले, अपनी पनाह में ले ले, वह मिन अज़ाबिल कब्र, कब्र का अज़ाब भी बहुत सख्त चीज है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, कब्र में कोई इंसान के साथ ना होगा, कोई साथ देने वाला ना होगा, कोई उसके साथ कब्र में उसका साथी नहीं बनना, कब्र का भी एक अजाब है। तो अल्लाह कब्र के अजाब से अपनी पनाह में ले ले। वमिन फितनतिल माहिया वल ममात, और अल्लाह जितने भी मौत के और जिंदगी के फितने हैं ना, जितने भी फितने हैं, जितनी भी आजमाइशें हैं, जितने भी इम्तिहानात हैं, मौत के भी और इस जिंदगी के भी, उनसे भी अपनी पनाह में ले ले। वह मिन शर्री फितनतिल मसीह दज्जाल, और मसीह दज्जाल के शर से भी अपनी पनाह में ले ले। अब दूसरी वाली जो रिवायत है वो भी मिलती जुलती है। आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में यूं दुआ फरमाते थे, और ये वाली जो है रिवायत ये बुखारी में है, और ये क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, उसमें भी यही बात थी इसमें भी यही, वह आउज़ुबिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, वह आउज़ुबिका मिन फितनतिल माहिया वल ममात। वो तीन चीजें वही हो गई जो मैंने आपको पहले मुस्लिम वाली रिवायत बताई है। आखिर में एक और चीज है जो उसमें नहीं है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ुबिका मीनल मअसमी वल मगरम, ए अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले गुनाह से और कर्ज से। कर्ज भी वो चीज है कि अगर शहीद के ऊपर भी कर्ज हो तो उसको भी, उसकी भी तब तक जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता जब तक कि कर्ज का उसका ना फैसला हो जाए। इसी तरह इंसान जो मर जाता है, अगर उसने कर्ज नहीं अदा किया उसकी रूह मुअल्लक रहती है जब तक उसका कर्ज ना अदा कर दिया जाए। शहीद की भी हर चीज माफ है लेकिन कर्ज उसका भी नहीं माफ। तो कर्ज ऐसी चीज है, तो कर्ज अव्वल तो लेना नहीं चाहिए जब तक बहुत जरूरत ना हो, और अगर ले लिया है तो उसको अदा करने की जल्द से जल्द फिक्र होनी चाहिए। तो इसमें कर्ज से भी पनाह मांगेगा और गुनाह से भी अल्लाह ताला तू ही बचा सकता है, तेरी पनाह में आ जाऊं तो मैं गुनाह से बच सकती हूँ, वरना मैं गुनाहों से खुद तो नहीं बच सकती। तो तीन चीजें, अजाबे कबर, फितनतुल महया वल ममात, और फितनतुल मसीह दज्जाल, ये दोनों में सेम है, लेकिन पहली वाली में अजाब जहन्नुम से पनाह थी और इस वाली में माथम और मगरम से पनाह है। लेकिन दोनों ही याद कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये चार चीजें हैं जिन से तुम पनाह मांगा करो, ये जरूरी है। यानी और भी मैं इंशाअल्लाह ताला कल आपको बताऊंगी कौन सी जो दुआ है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, तो आपने ये दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे तशहुद में मांगने के लिए कही हैं उनको तो जरूर मांगना चाहिए ना, तो इनको याद करना शुरू कर दें अभी से। और सिर्फ रब्बाना आतिना और सिर्फ रब्बी जालनी के ऊपर ही नहीं, बल्कि जितनी ज्यादा दुआएं आप मांगे, क्योंकि फर्ज नमाज के बाद खास तौर पे दुआएं कबूल होती हैं। और आपने एक नेकी का काम किया, आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप एंड में ये दुआएं करते हैं, तो बजाय सलाम फेर के आप दुआएं करें, ये दुआएं नमाज के अंदर करें। समझ लें कनेक्शन अभी जुड़ा हुआ है, सलाम फेरेंगे तो कनेक्शन टूट जाएगा, कनेक्शन अभी जुड़ा हुआ है, आपकी सारी बातें ऊपर जा रही हैं, नमाज ऊपर को जा रही है, साथ ही ये दुआएं भी ऊपर चली जाएंगी। और नमाज को सारी को जैसे मैंने आपको कहा था ठहर ठहर के पढ़ना है, ऐसा नहीं करना कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा और आपने कहा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, और आप सजदे की तरफ भी बढ़ना शुरू हो गए, नहीं, आराम से खड़े होके मुबारकन फी तक कहें, आपने ये सारा कुछ कहना खड़े होके, थोड़ी टाइम तो लगेगा ना, उसके बाद आप कहें अल्लाह अकबर और फिर जाना शुरू करें रुकू की सजदे की तरफ। यानी सजदे की तरफ पहले ही नहीं जाना शुरू कर देना कि मुबारकन फी पे आप सजदे में पहुंच भी गए और अल्लाह अकबर आप जाके आपने कही, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट है वो तेज होती है, तो मूवमेंट हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि बस जल्दी से खत्म करें, तो ये नहीं करना। और इसी तरह ये दुआएं भी सारी को याद करेंगे ताकि हम फोकस कर सकें, कभी एक दुआ पढ़ ली कभी दूसरी पढ़ ली इस तरह से। और इन दुआओं के अंदर भी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद सिखाई है, तो इसलिए इन दुआओं में जिस कदर जामियत है, हम अपने मुंह से इतनी भी दुआएं मांग ले, हम अपने मुंह से कितनी लंबी चौड़ी मांगेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ में हमें सारा कुछ सिखा गए। तो लिहाजा अपनी दुआओं में इन दुआओं को रखें और खास तौर पे इन चार चीजों से हमेशा पनाह मांगते रहें। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में हम सब की बख्शिश फरमा दे, हमें गुनाहों से बचा ले, हमें फितना मसीह दज्जाल से बचा ले, हमें अल्लाह ताला अजाब कब्र से बचाए, जहन्नुम से और जिंदगी और मौत के फितनों से बचा ले। जिस वक्त के सबसे ज्यादा शैतान हमला आवर होता है मरने के वक्त, अल्लाह ताला उस वक्त के फितनों से हम सबको महफूज रखना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।